संतप्त मान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारी। हमने समय सार के बंध अधिकार की आरंभ की 10 गाथाएं पढ़ी और उन दोनों के बीच में आने वाला एक कलश भी पड़ा, जिसमें उन 10 गाथाओं का सार एक कलश में हमने चंद्राचार्य देव ने भर दिया। हमने उस कलश को पढ़ा, कलश का पद्यानुवाद पढ़ा, हिंदी अर्थ पढ़ा और बनारसी दास का छंद भी पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको कुछ अंतर नजर आया? आपने घर पे इसको एक दफे जाके देखा है? ये मैं 500 किताबें लाया हूं आपको देने के लिए, क्या आप ले सकते हैं? घर भी ले जा सकते हैं, खरीद के ले जाएं ये जरूरी नहीं है, वैसे भी ले जा सकते हैं। तो 500 किताबें हैं क्या यहां? बताना जिस जिसके हाथ में ये किताबें हों, उठाना जरा। लगता है 100 किताबें भी नहीं है। खाए के लिए रखी है ये। आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं, डेरे पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन कल लाने की शर्त पर, और वहां उसे पढ़ें गहराई से। इसके लिए इनमें जो बहुत बड़ा अंतर है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहा राकेश का है? राकेश का हाथ उठाना, राकेश का नागपुर वाला क्या? वो सुनता तो फिर आज जाता नहीं। इसके लिए इसका पेज नंबर 349 निकालो। इस छंद का पद्यानुवाद और एक गद्यानुवाद और फिर बनारसी दास का कलश ये पढ़ें आप एक दफे शांति से, और फिर मुझे बताएं कि इनमें क्या अंतर है। शिकंदन जी साहब देखें, एक दफे देखें अच्छी तरीके से, इनमें कोई फर्क है क्या नहीं है। हाँ पढ़ो भाई धर्मेंद्र, पद्यानुवाद पढ़ो।
गर्म की ये वर्गणाए बंध का कारण नहीं, अत्यंत चंचल योग भी है बंध के कारण नहीं, करण कारण है नहीं, चिद अचिद हिंसा भी नहीं, बस बंध के कारण कहे अज्ञान मय राग आदि।
अभी पढ़ो कलश इसका
अर्थ पढ़ लेता हूँ।
अर्थ पढ़ो। हाँ,
पुरुषों के लिए कर्म बंध करने वाला न तो कर्म योग्य पुद्गलों से भरा लोक है, न चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया है, न अनेक प्रकार के करण हैं और न चेतन अचेतन का घात है, किंतु आत्मा में रागादि के साथ होने वाली एकत्व बुद्धि ही एकमात्र बंध का वास्तविक कारण है।
अब बनारसी दास का छंद पढ़ो।
कर्म जाल वर्ग न सो बंध में न बंध जी, बंध न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतने अचेतन की हिंसा सो न बंध जी, बंध न अलख पंच विष विष रोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंध जी बंध के राग आदि अशुद्ध उपयोग सो।
इसका अर्थ पढ़ने की जरूरत है? नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये 350 की तीन पंक्तियां पढ़ लो तीसरे पैरे की।
इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्मन वर्गणाओं, मन वचन काय रूप योगों, चेतन अचेतन की हिंसा और पंचेंद्रियों के भोगों से भी जीव को बंध नहीं होता, क्योंकि बंध का कारण तो एकमात्र रागादि से संयुक्त अशुद्ध उपयोग ही है।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मूल अपन ने कलश पढ़ा था, उसका हिंदी अर्थ पढ़ा था गद्य में पद्य में, फिर बनारसी दास का पढ़ा, फिर उसका हिंदी अर्थ पढ़ा, इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा हो कोई बताना चाहे तो हाथ उठाए। अंतर है ये मैं कह रहा हूं है? अज्ञान में क्या समझ में नहीं आया? हाँ है, ये लिखा है और दूसरी में क्या लिखा, अंतर क्या है दोनों में? ये तो लिखा है मैं एक बार, आप तो हाथ उठाओ अकेला, मैं पूछूं तो फिर बताना है ना। वो मैंने कल परसों भी सिखाया था क्या के वास्तव में, फिर बताता हूं वो प्रशिक्षण पद्धति में कि सामूहिक होता है प्रश्न और उत्तर होता है व्यक्तिगत। इसलिए इससे क्या होगा, सब लोग उसके उत्तर अपने मन में सोचें और सोच के तैयार रहें और फिर हम जो अध्यापक पूछे तो वो सबसे पहले तो नाम जानता हो तो नाम लेके पूछे, नाम नहीं जानता हो तो नंबर से पूछे, नाम नंबर नहीं जानता हो तो इशारा करके पूछे। और तीनों में सफलता नहीं मिले फिर बाद में कहे कि कोई इसका उत्तर देना चाहता है तो हाथ उठाए। तो चौथा पॉइंट आता है अध्यापक को, और फिर बाद में जो हाथ उठाएं उनमें से वो पूछे, यदि वो चाहता है कि मुझे सही उत्तर मिल जाए तो ऐसे विद्यार्थी से पूछे कि जो सही उत्तर देने में समर्थ रखता हो, वो चाहता है कि सही उत्तर नहीं मिले तो ऐसे से पूछे कि जो उत्तर नहीं दे पाए। आपको इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए है कि यदि उसे रिपीट करके समझाना है विस्तार से तो ऐसे जवाब नहीं देगा तो उसका समझाने का औचित्य सिद्ध होगा। यदि वो सही जवाब दे देगा तो उसे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ में? इतनी टेक्निक है इसमें, बात छोटी सी लगती है कि इसमें क्या है, ताजे से ताजे से पूछ लिया, क्या ताजे से नहीं पूछा है? अभी तक ना तो मैंने आपसे हाथ उठवाए, तो मैंने कहा आप एकदम मन में सोचो उत्तर मैं अभी दूंगा, फिर आप अपने मन का उत्तर उससे मिलान कर लेना, और यदि वो आपने सही सोचा हो तो आपको पहले से मैं धन्यवाद देता हूं, और नहीं सोचा हो तो फिर समझ लेना कि ऐसा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सभा में पब्लिक मीटिंग में ये संभव नहीं है, नहीं तो वो प्रवचन नहीं रहेगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसे प्रश्न उछालते हैं और फिर बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? उस वक्त तो वो उलाते हैं और फिर बाद में वही आफत पड़ जाती है गले, तो सभा में चर्चा शुरू हो जाती है, सबसे बंद करना मुश्किल पड़ जाता है। तो उन वक्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि आबेल मुझे मार करके जबरदस्ती बुलाना नहीं, कि हमारा जो पूछने का तरीका तो एक है कि आपका ध्यान आकर्षित हो जाए, ये अपन ने इतनी देर लगाई ना इसमें, सीधा भी बता सकते थे क्यों, इसलिए कि राकेश का इंतजार कर रहे थे अपन। इसके लिए नहीं, आपके दिमाग में वो प्रश्न गहराई से खड़ा हो जाए जिससे आपको उस बात पर फिर हमेशा जिंदगी भर याद रहे, देखो अंतर है, क्या अंतर है कि इसमें करण कारण है नहीं, ये तीसरे नंबर पर दिया है और इसमें करण का वाला पॉइंट चौथे नंबर पर दिया है ना। हाँ, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, वो बंधे न अलख पंच विषय विश्व भोग सो, ये तीसरे चौथे का अंतर आ गया। देखा इसमें क्या फर्क पड़ गया, छंद के अनुरोध से हो गया होगा, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। फिर आपको इसको यदि अनुशीलन पढ़ते पूरा था गहराई से घर पे जाकर के, तो इसमें अंतर है। वो तीसरे नंबर पर लेकर के एक कह रहे हैं कि यदि करणों से बंद होता होता तो केवल ज्ञानी के भी पांचों इंद्रियां हैं, तो फिर केवल ज्ञानी को बंधने का प्रसंग हो जाता, फिर केवल ज्ञानी को बंद होना चाहिए था, एक उदाहरण दिया। और इसमें बनारसी दास वाले में एक कहा कि यदि पांच इंद्रियों के विषय भोगों से बंद होता होता तो सम्य दृष्टि को बंद होना चाहिए था, वहां केवल ज्ञानी कहते हैं और यहां सम्य दृष्टि कहते हैं, कितना फर्क है। वहां तेरहवें गुणस्थान की बात करते हैं और यहां पर चौथे गुणस्थान की बात करते हैं, ये फंडामेंटल अंतर। अब देखो ध्यान से पढ़ो से, ये दोनों में फंडामेंटल अंतर है। हम पढ़ जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो ये कहते हैं, जो अमृतचंदाचार्य की टीका पढ़ के सुनाता हूं आपको, मैं ये सब तैयारी करके मंगा के लाया हूं, ये सब बात कर रहा है। अमृतचंदाचार्य की टीका आपके पास किताब तो हाथ में है ही नहीं, क्या करें, मैं पढ़ता हूं। अनेक प्रकार के करण भी धूल बंध के कारण नहीं है। 300 उसमें से 47 पेज, इसमें 347 पेज निकालो, तुम्हारे हाथ में जो किताब है मैं आपको संस्कृत में पढ़ के सुनाता हूं। ना अनेक प्रकारक करणानी केवल ज्ञानी नाम मपि तत्प्रसंगात। अमृत आत्मख्याति में क्लियर लिखते हैं तीसरे नंबर पर रखकर कि यदि इंद्रियों से बंध मानेंगे तो इंद्रियां केवल ज्ञानी के हैं, उन्हें बंध का प्रसंग आएगा। आत्मख्याति में यही लिखा, अपन ने अपने पन्नानुवाद में भी यही लिखा और अपन ने अपने गद्यानुवाद में भी यही लिखा। और अब कहते बनारसी दास का तो मौजूद था तो आपने क्यों बनाया। अब मैं कह रहा हूं मिलाओ बनारसी दास से, बनारसी दास ने ये लिया। फिर मैंने ये रिसर्च की कि बनारसी दास ने ये कैसे कहां से लिया, क्योंकि ना तो ये कुंद कुंद में है, ना अमृतचंद्र में है, कहीं नहीं है। तो बनारसी दास को मैं कई दफे कह चुका, आप लोगों ने मेरे व्याख्यान में सुना होगा कि उन्होंने समय सार का भी मूल गाथाओं का उतना गहराई से अध्ययन नहीं किया था, घबराना नहीं, संस्कृत आत्मख्याति का भी नहीं किया था, कलशों का भी सीधा अर्थ नहीं समझ सकते थे, वे संस्कृत के विद्वान नहीं थे। उनने तो कलश टीका के आधार पर ये समझा था। तो एक कमाल तो कलश टीका का है, एक कलश टीका भी मैं आपके सामने लाया, निकालो तुम्हारे पास तो क्या है, क्या निकालोगे। इसको पढ़ के सुनाता हूं, देखो। पांच इंद्रियां स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत तथा मन, ये भी बंध के कर्ता नहीं है। समाधान इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव के पांच इंद्रियां हैं, मन भी है, उनके द्वारा पुद्गल द्रव्य के गुण का ज्ञायक भी है, पुद्गल को जानता है वो, और पांच इंद्रिय और मन मात्र के से कर्म बंद होता तो सम्यक दृष्टि को जीव को भी बंद सिद्ध होता। इनने अगले पर को जानता है, इनके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से पर को जानता है, इतना ही लिया। अब देखो भावार्थ इस प्रकार है कि जो रागादि अशुद्ध भाव हैं तो कर्म बंद है, फिर पांच इंद्रिय और छठे मन का सहारा कुछ नहीं है। जो रागादि अशुद्ध भाव नहीं है तो कर्म का बंध नहीं है, फिर पांच इंद्रियां और छठे मन का कोई सहारा नहीं है, तो इन्होंने वो सम्यक दृष्टि लिख दिया होंगे इस केवल ज्ञानी से। लेकिन इनने भी शांति उससे इंद्रियों से पर को जानने तक की बात लिखी, भोगने की नहीं लिखी। देखो अब बनारसी दास ने भी ये किया, देखो पढ़ो है? चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव मने न अलख पंचे विषय विषय रोग सो है ना। विषय पंचियों के विषय रूपी विषरूपी रोग से वो बनता है। अब हमने इसका विस्तार कर लिया, अब वो गाड़ी वहां चली गई। बनारसी दास को मैंने बोला इतने लोकप्रिय थे कि बनारस की गली में उनके छंद इस तरह गाए जाते थे जैसे आजकल सिनेमा के छंद आज के लड़के गली गलियों में गाते हैं। उस जमाने के लड़के गाते थे, बुढ़े नहीं। अब इतना लोकप्रिय था, अब वो हमें रट 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 गया कि क्यों था। फिर कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। विषय भोग सो है ना, विषयों को जानने से कहे। अब बात वहां पर गई, वो इतनी प्रमुख हो गई कि हम कुंद कुंद अमृतचंद्र चेतन छाबड़ा के भावार्थ में भी इसमें लिखा, देख लेना। अब आपको थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि मैं क्यों आपसे कहता हूं कि अपने घर ले जाओ, पढ़ के आओ, शांति से देख के आओ। यदि गहराई से समय सार को समझना है कि जो आप घर पे पढ़ भी लेते तो भी आप इस बात को नहीं पकड़ पाते, इसलिए पढ़ने के बाद भी मुझे प्रचन करना जरूरी है। क्या समझ में आया ना है? तो इतना जो मैंने आपका समय लगाया ना, इसको मैं दो मिनट में भी कह सकता था। लेकिन एक एक सिद्धांत है कि जो चीज जितने काल आपके दिमाग में रहेगी वो उतनी स्मृति में पक्की हो जाती, धारणा उतनी पक्की हो जाती है। इसलिए अपनी प्रशिक्षण पद्धति में सिखाते हैं कि हम चार परिभाषाएं आज याद करानी है कि दो, तो पूरे तो एक घंटे तक उन दो ही परिभाषाओं को दोहराते रहो तरकीब से। तरकीब कैसे? वैष्णव पद्धति बहुत सब पद्धतियां हैं बताएंगे, तो उससे वो एक घंटा उन लड़कों के दिमाग में घूमती रहेगी तो पूरी पक्की याद हो जाएगी। घर से याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, और थोड़ी बहुत कचास रह जाएगी तो घर से याद करके लाओ, कल पूछेंगे तो वो बात पक्की हो जाती है। इतना इसी बात को कहना था, और इतने समय तक आपको वो आपके दिमाग में घुमाई, तो मैं समझता हूं कि अब एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा होगा कि इस संबंध में तो द्वारा भूल उसको होगी। देखो मैंने उतनी बारीकी से ध्यान दिया नहीं ना सच्ची बात पर। देखो मैंने अभी देखा, अब ये आपको मैं आप मेरी में भी कमी निकाल सकते हैं, मैं ही बताता हूं निकाल के। अभी चलो आगे आगे का छंद निकालो। तीन सौ 165 हाँ 353 पेज पे 165 नंबर।
लोक कर्म ततोस्तु सोस्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म तत् तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिदचेत् व्यापादनं चास्तु तत् रागादीनुपयोग भूमिमनयन् ज्ञानं भवन् केवलं बंधम नैव कुतोप्युपेत्ययमहो सम्यक् दृगात्मा ध्रुवम्।
यह है ना, इसमें कोई तीसरे नंबर पर करण है और चौथे नंबर पर चिदचित की हिंसा है ना कलश में। अब मेरा पद्यानुवाद पढ़ो।
भले ही सब कर्म पुद्गल से भरा यह लोक हो, भले ही मन वचन तन परिस्पंद में यह योग हो, चिद अचिद का घात एवं करण का उपभोग हो, फिर भी नहीं रागादि विरहित ज्ञानियों को बंद हो।
पलट गया मामला। अब देखिए इसे मैं कह सकता हूं कि छंद के अनुरोध से हुआ है। क्यों? कि गद्य में देखो, गद्य पढ़ो,
भले ही लोक कार्मन वर्गणा से भरा हो, मन वचन एवं काय के परिस्पंद रूप योग भी हो, अनेक प्रकार के पूर्वोक्त करण भी हो, तथा चेतन अचेत पदार्थों का घात भी हो, तो भी आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में भी सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ, मात्र ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, किसी भी कारण से बंद को प्राप्त नहीं होता, सम्यक दर्शन की कुछ ऐसी ही महिमा है।
अब देखो कि आपने सम्यक दर्शन ले लिया, यहाँ तो केवल ज्ञान नहीं लिया, तो देखो मूल कलर मूल कथा में देखो, बंधम नई रुक तो मुत हो सम्यक दीर्घात्मा धर्मम, सम्यक दृष्टि लिखा इसमें, इसलिए सम्यक दृष्टि लिया, इसलिए उपयोग भू लिखा। अब इतनी चीजें हमने ध्यान में रखी हैं, मान लो अभी आपको ये किताब कैसे बोलेंगी, सुबह कितने लोग आते हैं शांति जी सुनने के लिए 6:30 बजे, इतने ये लोग यही प्रवचन है सुबह भी, और ये आपके यहां हो रहे हैं ना, ये भी टीवी पे जाएंगे, उसके लिए हम कोई अलग से प्रवचन नहीं करते हैं, तो उस प्रवचन की आप कम महिमा मत समझो। तो आप समझ लो कि आपको आध घंटा वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसे आप यहां आकर के सुनो। हमें चाहते कि आपको आदत पड़ जाए तो घर जाकर के भी सुने, और आपकी टीवी पे नहीं आता हो तो वो उसको कहते ना टीवी वो केबल वाला, उसे नाग में दम करके कुछ पैसा दे दुआ करके उसे चलवाओ, इससे बढ़िया लाभ आपको कहां मिलेगा। बारहमासी घर पर 8 घंटा समय सार काम, अभी वहां निद्राधिकार चल रहा है और ये यहां बंदाधिकार चल रहा है, बिल्कुल एक कंटिन्यूशन में ही बात है, मेरे कहने का मतलब, इसलिए वहां भी ध्यान से सुनना चाहिए। एक थोड़ा सा मैंने आपको ये आइडिया दिया है कि किस तरह से इसमें गहराई से आप अध्ययन करेंगे तो आपको आपके उपयोग में बहुत कुछ विशेष बात ख्याल में आएगी। अभी अपन आगे गाथाएं बढ़ाते हैं, इसका पेज नंबर निकालना। इसके बाद यही कलश है ना जो मैं अभी ने पढ़ के बताया है, यही कलश है। अब इसका अर्थ तो स्पष्ट हो ही गया मेरे ख्याल से, अब इसमें अपन को समय लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, अब इसके संबंध में बनारसी दास का छंद जो अपन ने अभी कलश पढ़ा है ना, यही इसी का नंबर था। पढ़ो पढ़ो,
कर्म जाल बरगना को बासे लोका कास, माही मन वच काय को निवास, गति आओ में चेतन अचेतन की हिंसा बस, पुगल में विष भोग बरते हो देखे और बेजाओ में, रागादि के शुद्धता अशुद्धता है अलख की, यही उपादान हेतु बंध के बढ़ाऊ में, यही के विचक्षण अबंध कर होती हूँ का, राग दोष मोहना सम्यक स्वभाव में।
ख्याल में आया उसका अर्थ? देखो वो कहते हैं कि कर्मों से आत्मा क्यों नहीं बनता, मन बतकार से आत्मा क्यों नहीं बनता, चेतन अचेतन की हिंसा से आत्मा क्यों नहीं बनता, और कर्म के उपभोग से आत्मा क्यों नहीं बनता है ना, और राग आदि से क्यों बनता है, इसका उत्तर इसमें दिया है। क्या उत्तर दिया है? कारमान बरगणा को बास लोकाकाश माई, ये कारमान बरगणा तो लोकाकाश में रहती है, आत्मा में थोड़ी रहती है। लोकाकाश के जिन प्रदेशों में ये कारमान बरगणा रहती हैं, उन्हीं प्रदेशों में आत्मा भी रहता हो, और जिन प्रदेशों में आत्मा रहता है उन्हीं प्रदेशों में कारमान बरगणाएं भी रहती हैं, लेकिन वे कारमान बरगणाएं बिल्कुल जुदा तत्व है और भगवान आत्मा बिल्कुल जुदा तत्व है, उससे बंध का कोई संबंध नहीं है। देखो अब आपके शरीर में निगोदिया जी भरे पड़े हैं और तो तिरस भी हो जाते हैं, अब वैसे भी रहते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं तब भी हो जाते हैं, वही शरीर आपका शरीर है और वही उन कीड़ों में कौन कौन का शरीर भी है, लेकिन आपके जो रागादि होता है वो कर्मण वगैरह आपके आत्मा से चेंटती हैं, वो जो बाकी के जीव हैं उनके आत्मा से नहीं चेंटती, और उनके आत्मा में जो राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं उनका निमित्त से उनको चेंटती हैं, आपको नहीं चेंटती हैं। इसका मतलब सीधा हो गया ना कि कर्म के होने से वजह से तुम्हें क्या लेना देना है। वो कहते हैं कर्मण वर्णा को बास लोका का समाज, तेरे को क्या लेना देना है, कैसा आप दोनों क्यों नंदा कीजिए सागर सागर के। अरे तो सागर के हैं, सागर में लाखों लीव रहते हैं, तो तेरे को क्या हो गया, तो सागर से इतना एकत्र हो गया तेरा कि सागर वालों के बारे में हमारा मुझे थोड़ा रुचि का भाव निकल गया तो तेरा खून खोल गया और थोड़ी प्रशंसा निकल गई। क्यों रत्नाकर कहा भूल के कोप्पा हो गया, क्या लेना देना था तेरा सागर से, है पे संबंध बोलिए। कर्मण बरगणा को बास लोक आकाश माई, तो मन वचन का है। तो देखो ये बनासी दास पांडे राजमल जी का कमाल, मन बच काय को निवास गति आयु में, ये जो मनुष्य गति का नाम कर्म का उदय है और मनुष्य आयु नाम कर्म का उदय है, उसमें तेरे को ये मन वचन काय मिले। इनका इनका जो एग्रीमेंट किन के साथ है, वो गति नाम कर्म का उदय खत्म हो जाएगा मनुष्य गति का और मनुष्य आयु का, तो ये खत्म। इनका निवास काल में है, मन बच काय को निवास गति आयु में, और चेतन अचेतन की हिंसा बस है पुद्गल में। ये क्या है, अचेतन की हिंसा पुद्गल में बसती है वो तो समझ में आती है। अचेतन की हिंसा जानते हो क्या है बेटा, बताओ तुम्हें तो क्या बताएं, तुम्हारे पापा हैं क्या, तुम बताओ बेटा। ये जो किसी आदमी है ना तो उसका चित्र है, अब उसे आपको उससे तीव्र द्वेष है, तो आपने पेन से लेके उसकी आंखें फोड़ दी, किसकी, चित्र की है, तो आपको वैसा ही बंद होगा जैसा उसकी आंखें फोड़ने पर होता, वो अचेतन की हिंसा है। अब वो जिसमें जीव मौजूद है उसको अपन चेतन की हिंसा कहते हैं, कहते ना, तो वो ये कहते हैं वो चेतन की हिंसा भी चेतन की कहां है, वो अचेतन के वियोग का नाम हिंसा है। आंखें तो वहां भी पुद्गल ही की है, यहां फोटो में पुद्गल की है और उस आदमी के भी पुद्गल की ही है। क्या तुम भगवान के समोषण में चला जाएगा तो तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, क्यों तड़प रहा, भगवान के मंदिर में दर्शन होते हैं ना, तो क्या बात करते हो, ये पुद्गल की भगवान, वहां तो हमें साक्षात मिलेंगे। भैया तेरी इन चमड़े की आंखों से तो वहां भी पुद्गल के ही भगवान दिखेंगे, फिर आत्मा थोड़ी दिखने वाला है, ये खराबी तो इधर है। चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुद्गल में, मतलब पुद्गल में खेल हुआ है, यदि किसी ने किसी को मार डाला है तो पुद्गल को छिन्न भिन्न किया है सामने वाले ने, गोली मारी तलवार मारी, आत्मा को काटा है, आत्मा के प्रदर्शन में कोई काट सकता है। चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुद्गल में, विषय भोग बरते उदय के उझाऊ में, बोले तो कर्म का उदय नहीं होता तीव्र तो पांच इंद्रियों के विषय भोग दिखाई नहीं देते। ये चक्रवर्ती जैसे लोगों को जिनकी उनमें रंच मात्र भी सुख बुद्धि नहीं है, 24 घंटे जिनकी हे बुद्धि है, उनके भी ये देखे क्यों जाते हैं कि तीव्र उदय में देखे जाते हैं, विषय भोग बरते उदय के उझाऊ में, इसलिए आत्मा का बंधन चारों बातों से नहीं हो सकता। राग द्वेष से क्यों हो सकता है, तो पांचवी पंक्ति पढ़ो, रागा दे के शुद्धता अशुद्धता है अलख की। अब रागा दे के साथ शुद्धता पहले लगा रहे मैंने सुहराग हो चाहे अशुभ राग हो रागा दे के शुद्धता अशुद्धता है अलख की। अलख की माने आत्मा को अलख क्यों कहते हैं? इंद्रियों के माध्यम से देखा नहीं जा सकता। लख माने देखना और अलख माने दिखाई नहीं देना। एक शब्द और बताना चाहता हूं मैं। आप जानते हो कि अनख शब्द आता है ना, अनख माने क्या है और अघ माने पाप। सही है, पक्का? इसी समय सार में लिखा है अघ माने पुण्य और पाप दोनों। बताया था ना निकाल के मैंने आपको, क्यों भैया? इस समय सार में तो लिखा ही है, लेकिन ये व्युत्पत्ति से भी सिद्ध होता है। व्युत्पत्ति जानते हो ना? देखो, का माने होता है पृथ्वी, खा माने होता है आकाश, गा माने होता है दिव्य ध्वनि वाणी अपनी है, और घा माने होता है भगवान आत्मा। इसने कि नहीं कहना एकाक्षरी नाम माला है? 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 का है ना, का माने पृथ्वी। लघु सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी माने कह माने पृथ्वी और उसमें प्रसन्नता फैलाने वाली। सम्यक तो कौमुदी, समझ गए? ये ठीक है ना? क्यों हमारा भैया क्रम बोल पर ऐसा ना पृथ्वी ने। खा माने आकाश तो जानते ही हो ना, खेचर आकाश में चलने वाले विद्याधर पशु पक्षी बोलते ना खेचर। खा माने आकाश, और गा माने जिनवाणी होती है ज्यादा ना, और घा माने आत्मा। और आत्मा का आश्रय जहां नहीं है उसका नाम है अघ। आ माने नहीं होना, तो पुण्य और पाप दोनों ही भावों में आत्मा का आश्रय नहीं है, इसलिए अघ का अर्थ पुण्य और पाप दोनों होते हैं। अब एक दफे घा में आ लगा के अघ बनाया, क्यों? अब फिर हमें फिर आ लगाना है, और एक दफे जिसमें आ लग जाए द्वारा आ लग नहीं सकता। संस्कृत में एक नए समास होता है, नए समास नाम सुना? तत्पुरुष समास में एक एक भेद है नए समास। तो उसका एक साधारण सा नियम है कि किसी में नेगेटिव बनाना हो और वो शब्द व्यंजन से शुरू होता हो तो आ लगाना, वो स्वर से शुरू होता हो तो अंग लगाना। तो क्योंकि घा व्यंजन था इसलिए उसे नेगेटिव बनाने के लिए आ लगाया, तो क्या हो गया? अघ। अब आ है स्वर, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए लगाया अन्य, तो अन्य अघ प्लस टू अनघ। तो अनघ माने क्या हो गया? वो तो पुण्य पाप से पार। मैंने इसका अनघ शब्द का जो अनुवाद किया है वो पुण्य पाप से पार किया है, और करीब तीन चार दिन पहले ही किया था। नियम सार में आता है, नियम सार के कलशों का पद्यानुवाद कर रहा था तो अनघ शब्द वहां आया है, तो उसका मैंने अनुवाद किया है पुण्य पाप से पार आत्मा। अनघ की इस व्याख्या के आधार पर क्या है? रागा देख शुद्धता अशुद्धता है अलख की। ये लख से अलग बन गया है ना। यह है उपादान हेतु बंध के बढ़ाऊ में, कि बंध के करने में बढ़ाने में यह रागाधिक अशुद्ध उपादान है। उपादान से कार्य होता है, और वे जो चीजें थी वो तो निमित्त थी, और यहां पहले ही कह दिया था निश्चय दो चिंतेज, कि निश्चय ने से चिंतन करो कि बंध का हेतु क्या है। आया था कि नहीं आ रहा? निश्चय दे चिंतेज, निश्चय ने से चिंतन करो कि बंध का हेतु क्या है। तो निश्चय से चिंतन करना है तो निश्चय से तो उपादान ही कारण होता है, निमित्त तो निश्चय से होता नहीं है। या ही ते बेचक्षण अबंध कहो तिहू काल, ना पहले बंद होता था से ना।